आदरणीय डॉक्टर हुकुम चंद जी भारल के समय सार कलश 22 पर प्रवचन सुनिए।
नमः समय साराए और क्या चकार चित्त भावाय भावाय सर्व भावन।
जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है वह अज्ञानी है, और जो अपने आत्मा को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है। यह अग्नि ईंधन के दृष्टांत से दृढ़ किया। आत्मा का विकल्प करता है माने परद्रव्य में हूँ, ऐसा ये विकल्प करने का मतलब है। परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है, विकल्प माने व्याकरण में पढ़ते हो तो विकल्प से होता है, न्याय में अलग होता है। यहाँ सोए बताया था प्रचुन सार में विकल्प नहीं और अविकल्प नहीं, उनका अर्थ भेद है। और यहाँ पर ऐसी है कि ऐसी कल्पना करता है, ऐसी मान्यता करता है, ऐसी श्रद्धा करता है, ऐसा जानता है, इस सब को यहाँ विकल्प कहा। कि परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है, यानी परद्रव्य ये मैं हूँ ये आत्मा है ऐसा जो मानता है उसको यहाँ अज्ञानी कहा। और अपने आत्मा में जो आत्मा का विकल्प करता है माने ये मानता है कि मैं आत्मा हूँ वो ज्ञानी है। इतनी और ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा है। ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा में सारे जगत से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया की कितनी बातें जानता है और कितनी बातें नहीं जानता है इससे कोई मतलब नहीं है। मूल प्रयोजन तो ये है कि वो अपने आत्मा को जानता है या नहीं। आत्मा माने जो दृष्टि का विषय जो आत्मा है ना, उसको जानता है या नहीं, और यही मैं हूं ऐसा मानता है या नहीं। अब इसी के ऊपर कलश रूप का आप है वो कहते हैं भावार्थ में, तो दृष्टांत से बहुत चर्चा हो गई इसमें टीका में। तेजतु जगत दानी मोह माजन लीनम जगत इदानीं मोह आजन्म लीनम मोहम त्यजतु। हे जगत माने हे जगत के प्राणियों, जगत शब्द का आजन्म लीनम अनंत काल से होने वाले इस मोह को त्यजतु अब तो छोड़ो। किस मोह को? पर मैं अपना मानने रूप मोह को। मोह का अर्थ है हम किसी से प्रेम करते हैं वो नहीं है, मोह का अर्थ है उसे अपना मानने से मतलब है। तो कहते हे जगत अनंत काल से जिन पर पदार्थों को तूने अपना माना है अब तो कम से कम तू उसे अपना मानना छोड़। और क्या कर? रस का नाम रोचनम उद्यत ज्ञानम रसयतु। अतीन्द्रिय आनंद के रसिक जो जीव हैं उनको जो पसंद है ऐसे भगवान आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है उसके रस में लीन हो जा। रसयतु, रसयतु सदा रसयतु माने उस रस को भोग, उस रस में रस ले। और यह कथमपि नात्मात्मान साकम एकम। यह आत्मा अनात्मा के साथ कभी भी एकत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मनः अनात्मनः साकम, मिलो ठेलो में इसलिए जैसा होता है ना कि बस वो यहाँ कहते अनात्मनः साकम्, अनात्मा के साथ जो आत्मा नहीं है उसके साथ जो एकत्व का मोह है, ये आत्मा कभी भी एकता को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आत्मा अनात्मना साकम एका न, मिला कि नहीं मिला? ये नात्मा ना आत्मना है ना, तो ना निकाल दो अलग, फिर निकालो आत्मा, फिर निकालो अनात्मना, तो अनात्मना अनात्मा के साथ आत्मा का साकम मन साथ एकम मन एकता ना माने कभी नहीं होती है। मन आत्मा अनात्मा के साथ कभी भी एकता को प्राप्त नहीं होता। क्या आशा है कि जब जिस जीव ने शरीर को आत्मा माना तब भी शरीर आत्मा नहीं हुआ, शरीर और आत्मा को एक माना तो उस काल में शरीर आत्मा एक नहीं हुआ। तो जब नहीं मानेगा तब तो नहीं होने का सवाल ही नहीं। यदि हो गया होता तो दो बातें थी कि फिर हमारा उसे आत्मा मानना झूठा नहीं होता, तो हम जन्म से संबंधित ही होते। एक हो गया होता और हमने एक माना तो कहां गलती है, वो उससे एक नहीं हुआ और हमने एक माना तब तो वो मिथ्या दर्शन कहलाता है ना। दूसरी कि यदि वो हो गया होता तो फिर मोक्ष का कोई उपाय शेष नहीं रहता, वो उसे मिल ही गया होता बात खत्म की बात। लेकिन अभी वो मिला नहीं है, एक मेक नहीं हुआ, तभी तो वो बात चालू है ना। जैसे कोई अपने कुलीन घर का लड़का और दुष्ट लोगों के संगति में पड़ जाए डाकुओं वगैरह के में, तो अपन उसे बचाने का कोशिश करते हैं, समझाकर पुण्याकर लोभ देकर धमकाकर, करते कि नहीं करते? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अभी जो उनसे बिल्कुल एक में एक नहीं हुआ, ये डाकू नहीं हुआ है, डाकू की संगति में ही आया है, और वो दो चार की हत्या कर दे और दो चार डाके डाल दे रहे तो फिर बस बात खत्म है, फिर तो समझाने समझाने का सवाल ही खत्म हो जाता है ना। ऐसे ही आत्मा पर के एकत्व के संगति में पर को इसने अपना माना है, यदि हो गया होता तो फिर कोई उपाय नहीं रहता। मतलब दो तर्क हुए ना, अलग अलग बिल्कुल परस्पर विरुद्ध तर्क हैं। पहला तर्क क्या था बोलो? क्या बोलो? क्या संबंध? हाँ, संबंध इसलिए होता क्यों? एक ही मान लिया, एक हो गया और एक ही मान ले, समय की स्थिति तो हो गई ना, शरीर और आत्मा एक हो जाते और हम एक मानते तो हमारा ज्ञान मिथ्या कहाँ रहा? क्योंकि वो एक हुए नहीं और हमने एक माना, इसलिए तो हमारा ज्ञान मिथ्या है पहला। इससे अब दूसरा तर्क कि यदि ये एक हो गया होता तो फिर जुदा करना संभव नहीं था, यानी समय दृष्टि होना संभव नहीं था। पहले तर्क में तो ये कहा था समय दृष्टि होता, और दूसरे कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि तो है और वैसे ही हो गया है तो स्वभाव ही विकृत हो जावे तो फिर सुधार की संभावना नहीं रहती है। इसलिए माना है हुआ नहीं है, इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है और इसीलिए मिथ्यात्व का नाश होगा, सम्मय दर्शन हो सकता है। एक लड़का शराब पीने लग गया तो उसके पिता से, उसके पिता के दोस्त ने जाके कहा कि तुम देखते हो कुछ, तुम्हारा बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, तुम उसे संभाल रखते हो? कि नहीं, क्या बात है? कि मैंने उसे शराब पीते देखा। तो वो एकदम बिगड़ पड़ा कि झूठ बोलते हो, मेरे लड़के को बदनाम करने की कोशिश करते हो, अब कहा सो कहा, अब दोबारा नहीं कहना। तो उसने कहा भाई साहब, मैं भी तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, मैं तो जो अपनी आंखों से देखा है वो तुम्हें सचेत करने को कहता हूँ, तुम्हें बदनाम करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने बेटे को तुम बता लो खोटे रास्ते पर जाने से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं मानता, ऐसा पी ही नहीं सकता, कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो, तुम शराब खाने में शराब पीता था, और ये उसको ले गया उसके बाप को, तो दिखाया तो वो ऐसे बराबर पी रहा है। बाप ने देखा लेकिन कहे कि नहीं मुझे तो नहीं दिखता, प्रेमचंद कुमार जी मुझे नहीं दिखता, फिर मेरा लड़का वो भी शराब पी रहा है मुझे नहीं दिखता, तो और पास में गए कि अब देख कि मुझे नहीं दिखता, तुम तो आड़ से देखते थे ना तो जान, वो कहे मुझे दिखता नहीं, दिखता तो था लेकिन फिर भी क्या कहे कि मुझे नहीं दिखता है, तो और आगे बढ़े तो एकदम सामने पहुंच गए। सामने पहुंचे तो उस लड़के ने देखा कि पिताजी हैं, तो एकदम गिलास उठा के पीछे छिपा लिया। तो वो लड़का कहता है देख अब कहां पी रहा, बता कहां पी रहा, वैसा है तो पी कहां रहा बता। अब उसे कहने लगे, तो उसने कहा कि सेठ जी ऐसे धोखाधड़ी करने से काम नहीं चलेगा, तुमने अपनी आंखों से पीछे देखा, गिलास उसने पीछे छिपा लिया, तो हम मुझे से कहने लगे कहां पी रहा है चलो, कि नहीं मुझे नहीं जाना, और लौट के घर आ गया। तो अंदर जाके देखो तुम पीछे हाथ में गिलास है, नहीं मुझे नहीं देखना, देख लिया मैंने कि नहीं पी रहा है, घर आ गया। तो उसने क्या कहा कि मैंने तो देख लिया था कि पी रहा है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि ये मुझे देखने के बाद भी पीता रहता है कि नहीं पीता है, ये देखना था क्या यशपाल जी, इसलिए मैं जानबूझ के उसके सामने गया ये कह कह के नहीं दिखता नहीं दिखता, कि मेरे सामने भी पीने लग जाए तो बात खत्म हो गई, क्यों, और इसने गिलास छिपाया है इसका मतलब अभी कुछ बाकी है, अभी समझाने का चांस है, अभी धमकाने का समझाने का पुटाने का जो कुछ भी हो वो कोई रास्ता है कि अभी बच सकता है। और लेकिन यदि वो पहुंचेगा अरे पापा आप आइए 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 एक थोड़ा आप भी लीजिए, अरे भाई एक गिलास पापा को लाओ, तो काम खत्म, यानी आपकी शर्म खत्म हो जाती। क्या मतलब हुआ तो इसमें क्या फर्क है, क्यों चिंतन क्या फर्क है इसमें, फर्क इसमें ये फर्क है कि अभी उसकी श्रद्धा भ्रष्ट नहीं हुई है, चाहे तैसे भ्रष्ट हो गया है, श्रद्धा में अभी भी ये मानता है कि ये काम खोटा है और मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे करने लायक ये काम नहीं है, मेरे कुल में ये शोभा नहीं देता है, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी और पिताजी देखेंगे तो कितने नाराज होंगे और उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ होगी और मुझे उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना है, ये इतनी श्रद्धा उसके अंदर अभी है। बाकी जब श्रद्धा है तो सुधार के चांस है, और श्रद्धा में भी ये मान लेता कि हमारे कुल में तो पीते ही आए, तीन बोतल का नशा तो हमारे यहाँ रहता ही है, नहीं पिएंगे पिलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये गरीब हो गए हैं, मेरे जैसा पीते ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब अपनी अपनी भी कुल की एक मर्यादा है, अपनी भी इज्जत है, अभी नहीं तो कोई क्या कहेंगे कि शादी का जिसमें शराब नहीं चली, जन्म बर्थडे के बाद का जिसमें शराब नहीं चली, ऐसा उसको उपारे बुद्धि उसमें आ जाएगी तो फिर सुधरना उसका संभव। ऐसे ही भगवान आत्मा अभी हमें देह से एकत्व तो दिखाई दिया, मान्यता में आया, लेकिन अभी वो हो ही नहीं गया, हो जाता तो चांस खत्म, हुआ नहीं है तो सुधरने के चांस पूरे पूरे। इसलिए कहते आत्मना साकम अनात्मना साकम आत्मा कदापि न एकम कथमपि न एकम, आत्मा के अनात्मा के साथ आत्मा का एकत्व कभी भी नहीं होता है। नीचे एक और मजबूत लिखा किल कलयत काले क्वापि तादात्म्य वृत्ति, पर पदार्थ के साथ आत्मा की तादात्म्य वृत्ति क्वापि काले कलयति किसी भी काल में होना संभव नहीं है। ऊपर से लेना वो ना ना तो ऊपर से आ जाएगा किल भी निश्चय वाचक है मजबूती वाचक है और किसी भी काल में ये संभव नहीं है तीन काल में कि शरीर और आत्मा एक हो जाए। युगल जी की भाषा में कहें तो कि भाई आत्मा को अज्ञानी माना गया है, आत्मा को देह वाला राग वाला माना गया है, आत्मा देह वाला राग वाला अज्ञानी हुआ नहीं है, हो गया आत्मा को मिथ्या दृष्टि भी माना गया है, मिथ्या दृष्टि आत्मा हुआ ही नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि होने का उसका स्वभाव नहीं है, आत्मा तो आत्मा रहता है। उस आत्मा को देह मानना अथवा देह को आत्मा मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो आत्मा मिथ्या दर्शन कैसे हो सकता है? क्या जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा माना, तो वो ऐसा मानने से वो आत्मा मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? नहीं आया समझ? उदाहरण कि अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं और वीतरागी है, हमने उन्हें रागी माना, अभी रागी हो जाएंगे? हमारे मानने से उन पर क्या असर पड़ेगा? हमने अरहंत भगवान को स्वर्ग मोक्ष का दाता माना, तो वे स्वर्ग मोक्ष के दाता हो जाएंगे? हमने माना पद्मपुरु भगवान भूत भगाते हैं, तो पद्मपुरु भगवान भूत भगाने लगेंगे? हमने माना तो ये मानने से तो हमारी मान्यता खोटी हुई। तो वो कहते हैं कि शरीर को जीव माना, राग को आत्मा माना, तो इससे आत्मा रागी कैसे हो गया? राग को आत्मा माना तो वो मान्यता झूठी हुई, आत्मा में उससे कुछ नहीं होता है। तो जीव को मिथ्या दृष्टि सम्मा दृष्टि तो कहा जाता है, जब वो हुआ नहीं तो कहा जाता है ना। तो कहते वो तो मान्यता प्लस आत्मा, उस जीव को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, माने उस जीव को मान्यता की तरफ से मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। कोई जीव तो मिथ्या दृष्टि कभी तीन लोगों तीन काल में होता ही नहीं है, खेलना है ना। जब मान्यता को उस जीव में जिसे जिसे मानना है उसे शामिल करते हैं, तब उसकी मिथ्या दृष्टि संज्ञा पड़ती है और तभी सम्मा दृष्टि संज्ञा पड़ेगी। लेकिन जिसके बारे में माना जाता है वो सम्मा दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नहीं है। हाँ वो तो है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी काल में देहादिक के साथ आत्मा की तादात्म्य वृत्ति नहीं होती, सिर्फ ये माना ही जाता है। अभी देखो एकदम ऐसी सफेद झूठ कि जो जिसका कभी नहीं हुआ वो तो उसे उसका मान लिया, मान लिया तो फिर मान लेने से क्या होगा? स्वभाव में तो कुछ नहीं हुआ लेकिन पर्याय में कितनी अनंत हानि होगी। दूसरी तरफ से विचार कर रहे हैं आप, पर्याय में कितनी अनंत प्रकार की हानि हो गई कि अभी इसको व्यापारिक उदाहरण से समझें तो ख्याल में आए कि एक हीरा कांच का टुकड़ा था तो उसे आपने करोड़ों का हीरा मान लिया, तो वो हो जाएगा गुटकर? नहीं होगा ना। वो कांच का टुकड़ा हीरा तो नहीं होगा ना, ये तो नक्की है ना, पक्की बात। लेकिन उसको हीरा मानने से उस कांच के टुकड़े में तो कोई हानि नहीं हुई और हीरे में कोई हानि नहीं हुई, लेकिन मानने वाले को करोड़ों रुपए की हानि हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखो अब दूसरा पक्ष है कि स्वभाव में रंट मात्र हानि नहीं होती है और पर्याय में अनंत हानि हो जाती है। क्योंकि हमने समझ लिया कि दो करोड़ का है तो चलो एक करोड़ में खरीदो तो एक के दो हो जाएंगे। अब एक करोड़ रुपया भी हमारे पास है नहीं, करोड़पतियों के पास भी नहीं होता, जमीन जायदादें होती हैं, तो यहां वहां से निकाल निकाल के जमीन जायदादें गिरवी रख रखा करके तो भाई एक दो करोड़ का हीरा एक करोड़ में मिल रहा है, दस डबल होते हैं। कैसे भी औरत के गहने बेंट बांध के मकान गिरवी रख रखा करके फटाफट हम खरीद रहे सब दो करोड़ के मालिक होने के चक्कर में, तो दूसरे दिन ही सड़क पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? पर्याय में कितनी हानि हो जाएगी अब समझ में आ गई नहीं आएगी? मैंने हानि कुछ हानि नहीं हुई, जो ऐसी कह रहे थे समझ समझने कुछ ही नहीं हुई। जहां हुई वहां सर्वस्व हुई, और जहां नहीं हुई वहां कुछ नहीं हुई। कुछ हीरे में तो कुछ नहीं हुआ, और कांच के टुकड़े में कुछ नहीं हुआ, और मान्यता में हुआ तो मान्यता की तो मिट्टी पलीत हो ही गई। और मान्यता प्रभावित करती है आचरण को, क्या कैसे प्रभावित करती है आचरण को, कि हमने ये माना कि 2 करोड़ का हीरा है, तो हम सर्वस्व बेचकर जो भी हमारे पास था उसे हमने प्राप्त करने का प्रयत्न किया, ये आचरण हुआ ना उसी का, तो मान्यता का परिणाम स्वरूप आचरण हुआ। तब तो हमने सारी जगह से निकाल निकाल के औरत के गहने उतरवाए, मकान गिरवी रखा, यहां वहां से मांगा, दोस्तों से मित्रों से जहां जहां से संभावना थी, क्यों तहां तहां से हमने पैसा इकट्ठा करके और उसे देकर ऐसी खुशी खुशी आ गए कि कब विदा हो, लेके जल्दी जावे पैसा, तो मेरा झंझट कटा हुआ 2 करोड़ का हीरा मैं बेचूंगा फटाफट, वे सब ब्याज सहज चुका करके सारी संपत्ति उठा लूंगा, 75 लाख बच जाए, क्यों? और जब जाके देखा गया तो कांच का टुकड़ा है, तो फिर क्या होगा? ऐसे ही देह में आत्मा आत्मबुद्धि की, क्यों किरण भाई? तो क्या हुआ कि देह तो आत्मा हुई नहीं और आत्मा देह हुआ नहीं, इसलिए मूल वस्तु में तो रंच मात्र कोई हानि लाभ हुआ नहीं, लेकिन मानने वाले ने ये मनुष्य भव रूपी अपनी करोड़ों की संपत्ति, जिसका एक एक समय चक्रवर्ती की संपदा से अधिक मूल्यवान है, ये है ना मनुष्य भव की, तो ये सारी ज्ञान का क्षयोपम इतना अमूल्य मनुष्य भव इस देह की सेवा में देह के प्रति समर्पित कर दिया। एक एक समय इसकी अनुकूलता में, इसकी भोग सामग्री में, सब तरह से इसको कायम रखने में, स्वास्थ्य में हमने लगा दिया, और आखिरकार ये देह तो यहीं रह गई और जल गई, हम सब आंखों से देखते हैं, और हमारा मनुष्य भव का करोड़ों की संपत्ति होकर हम आगे सीधे नरक निगोद में चले गए, यही पर्याय में चले गए कि फिर अनंत काल तक अपने को पहचानने का अवसर भी नहीं रहे। तो पर्याय में कितनी बड़ी हानि है, स्वभाव में रंच मात्र भी हानि नहीं हुई, तो पर्याय में पूरी पूरी हानि है। दोनों पक्ष जो है ये जैन धर्म के इतने सशक्त हैं कि जब भी पर्याय की तरफ से वर्णन किया जाएगा तो एक ऐसा भयानक चित्र उत्पन्न होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। मैंने आज एक लेख पढ़ा था, जिन संदेश में था, कोई गणपति कोई लेडीज ने लिखा था, उसमें लिखा था, बहुत मार्मिक बात थी, एक पंक्ति मुझे याद है कि अपने पूर्व भवों में जो जो दुख और प्रतिकूल प्रसंग हमने भोगे हैं, एक दफे उनकी सिनेमा जैसी रील बन के और अपने को अपने टीवी पे भी देख ले रहे तो बेहोश हुए बिना नहीं रहेंगे, आधे तो हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे। पर बात कितनी बड़ी सत्य है, आप उसे कल्पना करो कि हम नरक में गए, निगोद में गए, गाय भैंस बकरा हुए, सोते हुए हमको बकरे हुए तो कसाईयों ने काटा, भूना, मारा, पीटा, वो सारे दृश्य, क्यों नरकों के सारे दृश्य ऐसे देखने से नहीं, किसी बकरे को कटा हुआ और लटका हुआ कि दुकान पे देखना अलग बात है, और हम ये बकरा थे और हमको ऐसे काट के लटकाना, ये देखना क्यों, इस विश्वास के साथ कोई चीज देखना, मुझे बहुत फर्क है कि कोई जीव नरकों में ऐसा पाप करते हैं तो नरकों में जाते हैं, उन्हें ऐसे धंधे खाते हैं, ये ऐसे तरीके से नरक के दृश्य देखना अलग बात है, और हम नरकों में गए थे और उसे देखना अलग बात है। स्वर्ग के देवता नरकों में जाकर दूसरे नरकों के तो दुख देख लेते हैं, लेकिन केवल ज्ञानी देख पाते हैं वो कि हम भी नरक में थे तब, कैसे कैसे दुख। कभी कभी आपने सुना होगा धर्मात्मा जीवों के मुख से, ऐसी भयंकर पीड़ा मेरे शत्रु को भी ना हो। सुना क्या नहीं, दुनिया तो ये चाहती शत्रु को हो, माने उस पीड़ा की इतनी भयंकरता कि मैं जिस शत्रु को खूब दुख देना चाहता हूं लेकिन इस लेवल की पीड़ा मेरे शत्रु को भी नहीं हो। इसका मतलब समझे ना आप क्या मतलब होता है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि सीता का जीव रावण को के जीव को वहां समझाने पहुंचा, कोई प्रेम प्रेम नहीं हो गया था, इसी करुणा का परिणाम है कि ऐसा भयंकर दुख मेरे शत्रु को भी नहीं हो। कोई रावण से राग नहीं हो गया था लेकिन ये भाव तो ऐसे हमारे अनंत काल के जो अनंत दुख हमने भोगे हैं नरक निगोद में, वे सब इस पर्याय में हुई भूल के परिणाम है। अब वो भूल कौन सी थी कि सिर्फ आत्मा जो नहीं है ऐसे राग को या देह को आत्मा मान लिया था। कभी कभी तो बहुत अटपटा लगता है वे क्या है, इतनी ही शत्रु की किसी गलती में इतना दुख हो सकता है। गलती तो बहुत मामूली दिखती है ना, दुख तो अनंत दिखते हैं। शास्त्रों में जैसा वर्णन किया हुआ है तो दुख तो अनंत दिखते हैं और गलती तो बहुत छोटी सी दिखती है। क्यों अरे भाई, तुम लोक में देखो ना, रेल में बैठे बैठे दो आदमी लड़ने लगे, तुम सीट पर मेरी सीट पर जरा जरा सी उसने आकर के कह दिया, धक्का दे दिया, दरवाजा खुला था नीचे गिर गया और आदमी मर गया। कितनी छोटी भूल है, बस दरार है, झगड़ा है थोड़ी सी जगह के पीछे, थोड़ी सी जगह के पीछे झगड़ा हुआ और कोई मारने की बात नहीं, जरा सा धक्का दे दिया उसने, हमको दिया उसने दे दिया और नीचे मर गया। अब उसके बदले में फांसी की सजा होती है और अगले भव में नरक जाता है। अब देखो कितनी गलती, कितनी छोटी दिखती है, तो हिंसा की गलती है, मिथ्यात्री तो इससे अनंत गुणी फलती है। लेकिन लोक के उदाहरण के लिए मैंने बोला, अभी नरक की बात में जाने दो कि लोक में तो इसके धक्के से इसको फांसी हुई, जेल हुई, मुकदमा लगा, जे हुआ, सारा चक्कर हुआ, तो कहने को तो मैं तो इतना सा किया था, इतना सा। अब वो भी मैं करना नहीं चाहता था, वो तो उसने ऐसा कर दिया, मुझे चांटा मार दिया तो मेरे से नहीं रहा गया और बिना ही वैसे उसने ना मालूम कैसे ऐसा हो गया। क्यों तो लोग वो भी दिखती ना छोटी गलती। अभी तो समझ लो कि इतना गुस्सा तो आया था ना कि हमने ऐसा धक्का मारा था, लेकिन बस में बैठे जाते थे और सामने से कोई ऐसी बहुत चीज देखने का अंदर में तीव्र विकल्प आया तो खिड़की में से ऐसा माथा निकाला हुआ है और वहां से ट्रक आया और माथा छील कर चला गया। हुआ ना अभी उदयपुर के तुम्हारी बस में, सुना था ना अभी हम जब वहां गए थे ज्ञान चक्र में, पर एक कुछ लोग सोनागिर की यात्रा, सोनागिर में था महासभा का अधिवेशन उसी समय, तो चार बस में भर करके वे लोग गए थे, तो उनमें एक भाई ने बस में से माथा निकाला और वहां से दूसरा ट्रक आया, पूरा माथा भर गया, खत्म हो गया। आपने सुना? अब ये तो देखो, किसी को मारने का भी भाव नहीं था, इसमें गलती क्या हुई कि सब माथा निकाला, तो माथा निकाला में क्या गलती हुई बता, कि अंदर में आगे क्या है, इतना देखने का राग तो हुआ ना, राग भी काय का, कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं, किसी के माँ बहन को छेड़ने का नहीं, पांच इंद्री के विषय भोग का नहीं, सिर्फ किसी गे को जानने का राग हुआ बस। मतलब क्यों समझ में आए ना, तो इसमें इसे पापों की गिनती में नहीं है ना, हिंसा में ना, झूठ में ना, चोरी में ना, कुसीर में ना, परिग्रह में, क्यों काका जी? लेकिन क्या ये राज कि देखें क्या ये लुभा नाम बस देखें क्या वहां क्या दिखना था वहां क्या दिखना क्या जो मैं पूछता हूं कि वहां दिखना क्या है भाई ट्रक आ रहा होगा कोई भीड़ होगी कोई औरत होगा कोई आदमी खड़ा होगा कोई पशु होगा पक्षी होगा कीड़ा मकोड़ा होगा और वहां दिखने को कोई सिनेमा नहीं हो रहा था नाटक नहीं हो रहा कोई ऐसी चीज खिड़की के बाहर नहीं जाने खिड़की के बाहर नहीं जाके फिर भी हम ध्यान ही लेते हैं तो फल फल कैसा निकला बोलो तो कैसा छोटी गलती का बड़ा फल अरे गे का लोभ पर को जानने का लोभ भी इतनी बड़ी गलती है नहीं परिणाम तो देखो तुम्हारे सामने है ऐसे पर को जानने का लोभ इतनी बड़ी गलती है यशपाल जी कितनी कि जिसका अनंत संसार में अनंत दुख हुआ ये पर्याय की तरफ से कथन है और द्रव्य में तो दुख नाम की चीज ही नहीं है दुख नाम के स्वभाव में कभी प्रवेश हुआ ही नहीं आत्मा कभी नारकी हुआ ही नहीं प्रवेश हुआ ही नहीं ये तो सब पर्याय है उत्तरकाली ध्रुव तो उनसे बिल्कुल भिन्न है एक दृष्टि वो है कि तो मिथ्या दृष्टि माना गया है मिथ्या दृष्टि तो कभी कोई हुआ ही नहीं है क्या ये भी इतनी बड़ा सत्य है कि नहीं अब इन दोनों सत्यों के अलग अलग निष्कर्ष हैं सही निष्कर्ष निकालें तो मुक्ति का मार्ग बनता है और गलत निष्कर्ष निकालें तो संसार का मार्ग बनता है तो सही क्या निकले और गलत क्या निकले कि जब इन दुखों की तरफ से चित्त बहुत आकुलित हो जाए कि हाय राम तो अनंत काल से अनंत दुख भोगी अनंत राग द्वेष किया अनंत काल से मिथ्या दृष्टि हूं अब तो मैं बिल्कुल पुराना पक्का मिथ्या दृष्टि हो गया हूं बहुत पक्का इतने काल का पुराना हूं ना तो क्या होगा तो ये कहते हैं कि क्या बात करता है स्वभाव में तो मिथ्या दृष्टि कभी हुआ ही नहीं क्यों ये स्वभाव का भान कराया है और मिथ्या तो कभी अनादिकाल का होता ही नहीं एक समय का होता है एक समय पुराना तो सब नष्ट हो गया और जब इसमें क्या है थोड़ा सा आलू खा लेने में क्या है थोड़ा सा मूली खा लेने में क्या है थोड़ा सा रात पानी पी लेने में क्या है ऐसे हर पाप छोटा लगता है इसमें क्या है इस जरा सा झांक के देख लिया तो इसमें क्या है कोई मैंने छोड़ा थोड़ी कि माँ बहन को है मैंने भी हाथ थोड़ी पकड़ लिया थोड़े दो शब्द प्रेम के बोल लिए मीठे तो इसमें क्या तकलीफ हो गई ऐसे लोग करते कि नहीं करते जरूर बोला जरूर मजाक थोड़ा जरूर किया तो दो प्रेम बोल के किसी के हृदय को संतोष तुम्हारा क्या बचा हाथ तो नहीं छुआ अब मैंने कुछ कहा तो नहीं हमने देख लिया थोड़ा आंख भर के तो क्या हो गया तुम्हें क्या तकलीफ हो गई तुम्हें आंख भर के मैंने देख लिया और मेरी आंखों को संतोष हो गया ऐसा कहके हर पाप को छोटा बनाने की प्रयास करता है दूसरे की माँ बहन को झांकने का छेड़ने का भंड वचन बोलने का दो शब्द मुंह से गाली निकल गई गुस्सा में तो क्या हो गया यदि थोड़ा गुस्सा आ गया मैंने चांटा भी मार दिया तो क्या हो गया करे मैंने कोई बंदूक की गोली से तो मार नहीं दिया हर पाप छोटा लगता है थोड़ा सा देख लिया तो क्या होता है हर पाप जिसको छोटा दिखता है उसको बताते हैं कि भाई कोई पाप छोटा नहीं है अनंत काल के अनंत को भोगने में तेरा ही निमित्त बनेगा और पर को अपना मानना तो इतना बड़ा पाप है कि अनंत काल के जो अनंत दुख तूने आज तक भोगे हैं ये सब इसकी वजह से उसका दृष्टिकोण है और ये दोनों बातें ऐसी नहीं है कि बच्चों को समझाने बुझाने के लिए बड़ा चढ़ा के कह दी है बिल्कुल फैक्ट है हाथ पे रखे हुए ओंगली जैसा कि अनंत काल से आत्मा को मिथ्या दृष्टि माना लेकिन भगवान आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ ना बात पक्की है ना तो सम्मान ऋषि तो बजाएगा कि नहीं बजाएगा तो कीर्ति मिथ्या दृष्टि तो नहीं हुआ वो तो ठीक है सम्मान ऋषि तो हो जाएगा नहीं होगा जिस दृष्टि से मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ अनंत काल में ये आत्मा उस दृष्टि से अनंत काल तक सम्मान ऋषि भी नहीं होगा है जिस दृष्टि से सम्मान ऋषि होगा उस दृष्टि से अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि भी है वहां तो वो दृष्टि लगा है और यहां ये दृष्टि लगा है। एक ऐसा भी है कि अनादिकाल से भगवान आत्मा एक समय को भी मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, तो सम्य दृष्टि हो जाएगा तो हो क्या जाएगा, इसी का नाम तो सम्य दृष्टि है। क्या क्या समझे ना, ऐसी दृष्टि का नाम और अलग से कौन सा संबंध दर्शन होना है, क्यों क्या हमने भगवान की पूजन करी है तो हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते लोग। मैं कहा तुम्हें मिला कि नहीं मिला, तुम्हें आनंद आएगा कि नहीं आएगा, कि तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया, क्या भी तो नहीं आया, कि नहीं आया तो अब क्या आएगा, जब तुम पूजा कर रहे थे तभी नहीं आया तो उसके बाद आने का क्या सवाल है, क्यों नहीं साहब उस वक्त तुम्हें बहुत आया, बहुत आया ना, तो जितनी पूजा करी उतना आया कि बहुत आया, कि बहुत आया तो अब और भी मांग करने अन्याय की बात है, मूल ब्याज दो ही तो मिल गया है, अब और क्या चाहिए तुम्हें कि भविष्य में आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आ गया है तो अब तुझे और क्या अपेक्षा है। बोलो यशपाल जी, हमने जनवाणी का स्वाध्याय किया, समय साथ पड़ा, हमने 5 साल तक शास्त्री किया, ये पढ़ा, खूब शास्त्र पढ़े, अब हमको तो भविष्य में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि तुझे पढ़ने में मिला कि नहीं मिला, कि नहीं मिला तो गारंटी से नहीं मिलेगा। जब साक्षात उसका समागम किया, उस तत्व ज्ञान को तूने समझा, तो उस वक्त नहीं मिला तो बाद में कब मिलेगा, रोटी खाने पे वक्त भी तृप्ति नहीं हुई तो बाद में कहां से तृप्ति होगी, क्या मुझे तो बहुत आनंद आया, 4 साल तो ऐसे निकल गए स्वर्ग में निकल गए, तो बहुत आनंद आया ना, तो अब और क्या चाहिए, क्या और क्या चाहिए, क्या हाँ बस मैं तो पूरी तरह तृप्त और संतुष्ट हूं, तो इसमें ही रहे तुम तृप्त, इसमें ही रहे संतुष्ट आता ना, तो अब हाँ रहे कहा चाहिए नहीं कि मिलेगा, अब तुझे मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा क्योंकि अब तू इसमें तृप्त हुआ है, तो इस तृप्ति के काम को तू छोड़ेगा कैसे, बड़ा दिन गिर रहा हो, 2 महीना और है, अब 59 दिन है, 58 रह गए, 57 रह गए, 56 रह गए, तेरे दिन पूरे कर रहा हो तो ना उसे अभी मिला है ना उसे कभी मिलेगा, ऐसा वस्तु का स्वरूप होगा, इसमें कोई क्या करेगा, ये तो तत्काल धर्म, तो तत्काल भी चाहिए धर्म, तो तत्काल, मैं तो कहता हूँ कर्म और धर्म में सबसे बड़ा फर्क क्या है, जिसका फल तत्काल मिले उसे कहते हैं धर्म, और जिसका फल नियम से तत्काल ना मिले उसे बोलते हैं कर्म, क्यों सुरेंद्र कुमार जी, इसलिए कि कर्म का नियम है कि पहले वो बंधता है, फिर वो कम से कम अंतर मुहूर्त तक सत्ता में रहता है, आवादा काल होता है ना, फिर उसके बाद वो उदय में आता है तब फल देता है, तो कोई कर्म अंतर मुहूर्त के पहले फल दे ही नहीं सकता, तो तत्काल फल नहीं देगा, और धर्म ना बंध है ना सत्ता है ना उदय है, जिस वक्त किया उस वक्त फल हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ये मैं हूं ऐसा मान लूंगा और देह में से अपनापन छोड़ दूंगा, तो फिर मेरे तुम्हारा सम्मदर्शन ज्ञान प्राप्त मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कि फिर क्या मिल जाएगा, तू ये मान लेगा कि तेरा मान लेने का नाम सम्यक दर्शन है, इससे जुदा और क्या मिलेगा, इससे अलग और मिलेगा ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित हो जाना यही सम्यक दर्शन है, तो अगर वो तो ठीक है वो तो हो गया, तो वो सुखमुख मिलेगा कि नहीं, कि अब बाकी क्या रह गया, क्यों कि इसको अपना मानने था इसमें गड़बड़ होती थी और इसका दुख था, अब उसमें अपनापन छूट गया उसमें गड़बड़ हो रही तो दुख होगा ही नहीं, और ये इसमें तो गड़बड़ होती ही नहीं है, त्रिकाली ध्रुव है इसलिए अब तो दुख का कोई सवाल ही नहीं रहा, लेकिन सिर दर्द मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा, क्यों तुम्हारे सम्मत दर्शन से सिर दर्द मिटता है कि नहीं मिटता है, कि सिर ही मिट जाता है दर्द की बात तुम क्या बात करता है, सिर ही अपना नहीं रहता है ना, कि ऐसा संबंध है समय में तो ये हमारा सिर ही मिट जाए तो तुझे मिले होगा भी नहीं, ऐसा मत घबरा, इतनी आसानी से नहीं होता है, इतना जल्दी नहीं होता है कि तुमने कहा और फटाफट तेरे को हो गया, खूब अच्छी तरह सोच ले समझ ले। यहाँ तो दर्द नहीं मिटेगा, जिसमें दर्द है वही तेरा नहीं रहेगा। बोल कि धंधे में बहुत परेशानी है, एक हमारे यहां अशोक नगर में रहते थे तो हमारे एक मौसा जी थे थोड़े दूर के, सब लोग जानते हैं दाऊ दाऊ कहलाते थे, सुरदारों का स्वर्गवास हो गया, तो वो हमसे बहुत कहते थे कि पंडित जी आप लोग बड़े आराम है, हम लोग बड़ी तकलीफ है, क्या सेल्स टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले, इतने एक्साइज वाले, न मालूम कितनी कितनी झंझटें, कितनी कितनी परेशानी धंधे में। तो दो चार दफे सुन के मैंने कहा मौसा जी एक बात कहूँ क्या कि आप तो बहुत तकलीफ में है और हम बहुत आराम में है, तुम नौकरी वाले हैं, अपने मजमी ने मैंने तनख्वाह उठा ली और आराम में बस अपने काम करे और आपको तो बहुत तकलीफ है, तो ऐसा यदि हम तकलीफ महसूस करते अपने काम में और तुम्हारे काम में आराम तो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि नौकरी छोड़ करके धंधा करके सेठिया बनना, करोड़ों का धंधा करना, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको तो मैं अभी हाल 110 रुपए में मिली नौकरी दिलाता हूं, छोड़ो। तुम्हें क्या तकलीफ है बोलो, करे धंधा था इनकम टैक्स साल का सेवा खड़ा करता हूं, आप तो मजाक कर मजाक करता हूं, मजाक तुम करते हो रोजाना मेरे से, मैं तुमसे कर रहा हूं, तुम रोजाना मुझको संतोष दिलाने की कोशिश करते हो कि तुम मजे में हो और हम बहुत तकलीफ में हैं। राजीव गांधी कहे कि आप तो पंडित जी बहुत मजे में हो और आराम से दो टाइम प्रश्न कर दिए और अपना बढ़िया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे तो कितना कितना मुख्यमंत्रियों से निपटना पड़ता है, बीपी सिंह से कितने कितने झगड़े हैं, मैंने कहा भैया आ जाओ तो तुम संभाल लो, हम तुम्हारा संभाल ले लेते, क्यों क्या हम कहें कि हम तकलीफ में हो, तुम आ जाओ यहाँ तो हम तुम्हारी सीट पर, हमें जाना तो बहुत कठिन है, तुम्हारी हमारी सीट जैसी सीट तुमको कहीं भी मिलती है अभी बोलो, तो काय को धोखा देते हो हमको, मैंने मैं तो तुम यही मानते हो कि वो ही अच्छा है, उसमें बहुत आनंद है और हमारे काम में कोई सुख नहीं है और उसमें ही है, ऐसे ही अंदर से ऊपर की बातें करने से क्या लाभ है, देह में अपनापन की छोड़ने की बात दिखता तुमको इतना सरल है ये काम, कब अपने भगवान आत्मा में अपना मान लो, एक सेकंड में मान लो अनंत सुख हो जाएगा, बात भी सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस अनंत काल से जिसे अपना माना, अनंत दुख के बाद में भी अपनापन नहीं छूटा, वो इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है, उस मियां जैसा कि मियां था कि हिंदू था, मुसलमानों ने उधमबाजी की तो पकड़ करके उसको मैंने सरोवा डाल दिया, होता कोई सरोवा क्या, सोरवा डाल दिया और चोटी मूड़ दी, पकड़ के मुसलमान बना लिया, चोटी मूड़ दी, मुंह में सोरवा डाल दिया और बस मुसलमान बना दिया, बेचारा रह गया मुसलमान बन गया, नमाज पढ़ने लग गया, मंदिर छूट गया, अभी बुढ़ापा था, कमर में बहुत दर्द था तो बैठ के से खड़ा हो गए तो दर्द बहुत हो गया, तो बोले हे राम, तो राम निकला मुंह से, तो वे मुसलमान बोले अरे तू तो पता नहीं कि तू मुसलमान हो गया है, अब तू हिंदू नहीं है, अब राम क्यों बोलता है, अब तो हे अल्लाह बोल, बोले भैया देखो आखिर 60 वर्ष का राम इस घर में घुसा है, वो इतनी आसानी से थोड़ी निकलेगा, निकलते निकलते निकलेगा, ठीक है मैं अल्लाह बोलूंगा, जब तक मैं सोच सोच के बोलूंगा तो अल्लाह बोलूंगा ध्यान सुनना, और जब असली दर्द होगा और सोचने की बुद्धि बंद हुई तो राम निकलेगा, ऐसे जो सोच सोच के प्रयोजन करेंगे तो मैं त्रिकाली इधर भगवान आत्मा देह में नहीं रहा और यहां तक कि केवल ज्ञान में नहीं ऐसा निकलेगा, समझेगा नहीं समझे, और जब असलियत में अपनी औकात पर आएंगे तो मैं यशवंत, मैं पंडित हुकुमचंद, मैं जो भी जो कमलेश हम विमलेश जो भी हूं, सब ऐसा एकदम असलियत में एक मिनट में उधर आ जाता है कि नहीं आ जाता है, जब जरा अभी कमर में दर्द जोर का हुआ तो हे राम निकलेगा अल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह तो ऊपर से चोपड़ा हुआ है ना, शोरबा पीने से अल्लाह अल्लाह का भगत तो बना है और राम अंदर से घुसा हुआ है। देह का एकत्व का महामिथ्यात्व अनादिकाल से अंदर में घुसा हुआ है और ये त्रिकाली ध्रुव में हूँ, देह में नहीं हूँ, राग में नहीं हूँ। ख्याल में आया ना, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, राग है जिसमें किंतु जो है राग से भी अन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है, मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मातन्न हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं गेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं एक गायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। ये तो सीखा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो सोचा हुआ है, क्यों? ये तो सोच सोच के नक्की किया हुआ है और अंदर से वो अनुभूति से नक्की किया हुआ है कि मैं देह हूँ, मैं राग हूँ। ख्याल में है ना, ये अभी भाषा की वस्तु बनी है, तो जब तक समझ समझ के बोलेगा, अरे भाई अकलंक भी बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते थे, नहीं बोलते थे क्या? अरहंते शरणम पब्बज्जामि बोलते थे। जब बौद्ध विद्यालय में पढ़ते होंगे ना, रोजिना की प्रार्थना होती होगी तो बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे? बराबर बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन जब असली संकट का काल आया तो नमो रहंताणम नमो सिद्धाणम निकलने लग गया। क्यों? कि अंदर जो श्रद्धा में बात जमी रहती है वो असली संकट काल में माताएं बहने हैं ना, तो थोड़ा मोटा दर्द होगा ना तो अहंत को याद करेंगी, सिद्ध को याद करेंगी, असिया उसा याद करेंगी, नमो अहंताड़म याद करेंगी, और जोर का दर्द हो ये माँ हमारी, एक मिनट में अम्मा को याद आ जाएगी ना, क्योंकि वो जन्म का संस्कार है। तो जब जब तकलीफ पड़ती थी तो अम्मा को याद करता था कि नहीं, रोता था एक महीने का दो महीने का, तो असली तो वो अंदर में जमा हुआ है। ये तो पाठशाला में सीखा है, अरहंत को याद करना, सिद्ध को याद करना, कि संकट में आया तो नवो कार मंत्र पढ़ना, तो पाठशाला में सीखा है, और अम्मा को याद करना जन्म घूटी में सीखा था। जब असली दर्द आता है तो अम्मा याद आ जाती है, अरहंत भगवान क्या कह रहे अम्मा, हाँ नवो है होश में आया तो फिर ऐसा अपना त्रिकाली जो भगवान आत्मा है ना, असलियत में हमारे अंदर में वो एकत्व जो अंदर में घुसा हुआ है वो वहां भयंकर मिथ्यात्व है और वो इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। उसके लिए प्रत्येक जीव को अनंत पुरुषार्थ अंदर से जागृति का करना पड़ेगा, तब वो मिथ्यात्व अंदर से निकलेगा। आचार्य कहते हैं भैया, इस देह की और आत्मा की न क्वापि तादात्म वृत्ति कभी भी एकता तो हो ही नहीं सकती है। तर्क और युक्ति से सब बात ख्याल में आती है, लेकिन जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो ये बात तेरी बनेगी नहीं। इसलिए इस मनुष्य भव में देह छूटे उसके पहले, ध्यान से सुनना, देह छूटे उसके पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा ख्याल में आ जाए तो आ जाए, लेकिन देह छूटी तो फिर देह से भिन्न भगवान आत्मा ख्याल में आना बहुत कठिन है, क्योंकि फिर ऐसी देह भी नहीं मिलेगी कि जिस देह में देह से भिन्न भगवान आत्मा ख्याल में आ सकता है। अभी तो बहुत देर है, क्यों 20-22 वर्ष के हुए हैं तो 70-80 वर्ष में छूटेगी भैया, कोई गारंटी है? जिसने जितनी भोग ली वो पक्की, बाकी की गारंटी तो नहीं है ना। इसलिए ऐसा नहीं सोचकर कभी तो बहुत काल है ये सोच के कि भाई क्या पता अगले क्षण क्या हुआ, अपने उग्र पुरुषार्थ को प्रत्येक को जागृत करके देह से भिन्न भगवान आत्मा में एकता एक बार अवश्य स्थापित कर लेनी चाहिए।